एक अलवर थे जिनका नाम था तिरुमंगई।
एको ये तो एको नहीं पाए, वॉल्यूम जैसा है तैसा सुन।
तिरुमंगई अलवर ने
वॉल्यूम एको नहीं।
हरे कृष्णा। तिरुमंग अलवर बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान विष्णु के, और वो जब अपने भ्रमण के दौरान श्रीरंगम के स्थान में आए तो वहां उन्होंने रंगनाथ जी की मूर्ति देखी। इसके इतिहास के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये विभीषण को भगवान रामचंद्र ने प्रदान की हुई थी, और विभीषण इस मूर्ति को आगे लंका तक नहीं ले जा पाए, श्रीरंगम में ही उनको रखना पड़ा। तो जब तिरुमंगई अलवर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत छोटा सा मंदिर वहां पर था, और केवल एक पुजारी आके वहां दिन में एक बार विग्रह की सेवा करता था, और वो भी जल्दी जल्दी से फूल और दीप अर्पण करके गड़बड़ गड़बड़ में फिर भाग जाता था, क्योंकि वहां इतने घने जंगल थे कि पुजारी को डर रहता था कि कोई शेर वगैरह कोई आके खा ना जाए मुझे। जब तिरुमंगई अलवर ने यह देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ठान लिया कि मुझे अच्छा मंदिर बनाना चाहिए भगवान के लिए। लेकिन जितने भी अमीर जमींदार राजा वगैरह वहां पर थे, उन्होंने एक पैसा भी दान में देने के लिए स्वीकार नहीं किया। तो फिर तिरुमंगई ने सोचा कि और कोई तरकीब निकालनी चाहिए। बड़ा विचित्र मार्ग उन्होंने अपनाया जो कि साधुओं को अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो डाकुओं के दल के नेता बन गए, और उनके दल में करीब करीब 1000 डाकू आ गए, और फिर उनके 4 शिष्य थे जिनके अलग अलग सिद्धियां थीं। एक जो है उसकी वाक सिद्धि थी, वो इतने अच्छी तरह से बोल सकता था कि किसी को भी प्रभावित कर सकता था, भ्रमित कर सकता था। दूसरा व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता था। तीसरा व्यक्ति किसी भी ताले को खोल सकता था, और एक था जो किसी के छाया के ऊपर कदम पैर रख के उसको उसी स्थान में स्थित कर सकता था ताकि वो व्यक्ति हिले नहीं वहां से। ऐसे अद्भुत सिद्धि वाले उनके शिष्य थे। तो इनकी सहायता से बहुत लूटा उन्होंने, और फिर उसके बाद में जो राजा वगैरह थे, जब मंदिर बांधना शुरू हो गया, खुद वो सोचने लगे कि ये महान भक्त हैं, और जो भक्त नहीं थे खुद वो सोचने लगे कि अगर हम अपनी ओर से धन नहीं देंगे तो वैसे भी छीन लेंगे, तो चलो अपने आप से देना अच्छा है। इस तरह से धीरे 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 रंगनाथ मंदिर बनता गया। विस्तार में इस कथा का चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे। 60 साल लगे पूरे इस मंदिर को बांधने के लिए, तब तक तिरुमंगई काफी वृद्ध हो गए थे, और अंततः जब मंदिर का निर्माण हो गया फिर कई सालों तक वहां पर तिरुमंगई अपने शिष्यों के साथ और अन्य भक्तों के साथ में रहे। ये डाकू बीच में बहुत तंग करने लगे कि हमें पैसा चाहिए, इतने साल रुके थे वो धन के लिए, क्योंकि तिरुमंगई ने कहा था कि जब मंदिर बांधेंगे आपको बहुत सारा धन देंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण हो चुका लेकिन डाकुओं को अभी तक पैसा नहीं मिला था। तो डाकू षड्यंत्र रचा रहे थे कि तिरुमंगई की हत्या करनी चाहिए। फिर उनके उस शिष्य ने जो कि पानी पर चल सकता था, उनको नौके में ले जाकर डुबा दिया नदी के बीच में, और वह पानी के ऊपर चलते हुए आ गया। तो ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। तो खैर, ये इतिहास है श्री रंगनाथ मंदिर का, श्री रंगम में। तो ऐसे वहां अर्चक विग्रह की सेवा और अच्छी तरह से बढ़ती गई। तो इसके पहले से हम ये चर्चा कर रहे थे कि रामानुजाचार्य अब आ गए थे श्री रंगम में, और वहां प्रमुख आचार्य बने थे। लेकिन जैसे वो ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे तो वहां के जो प्रमुख पुजारी थे बहुत ईर्ष्या करने लगे थे, और उन्होंने जान से मारने का प्रयत्न किया रामानुजाचार्य को, विष उनको खिलाया, लेकिन दोनों बार असफल हुए। बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ, वो भी रामानुजाचार्य के शिष्य बने। इसके बाद में रामानुजाचार्य ने एक बहुत बड़े विद्वान से तर्क में वाद में विजय प्राप्त कर लिया। यह दिग्विजयी पंडित था जिसका नाम था यज्ञमूर्ति। आगे चल के वो रामानुजाचार्य के शिष्य बने और कई मूल्यवान वैष्णव ग्रंथ लिखे। इस घटना के बाद में और कई शिष्य बने रामानुजाचार्य के, और एक बार वो और एक अलवार जिनका नाम था नामा अलवार, उनका एक ग्रंथ है सहस्र गीति, 1000 गीत भगवान के गुणगान में, उनको पढ़ रहे थे। और उस दौरान एक श्लोक आया जिसमें श्री शैल धाम का वर्णन आया। श्री शैल धाम ये तिरुपति है, और तीन बार जब एक बार उन्होंने पढ़ा तो रामानुजाचार्य के मन में इच्छा हुई कि उनके शिष्यों से किसी को एक पहुंच जाकर एक फूल का उद्यान बनाकर उन फूलों से वेंकटेश्वर बालाजी की सेवा करनी चाहिए। तो उनके एक शिष्य जिनका नाम था अनंत आचार्य, वो तैयार हुए। रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उनको पूरा आशीर्वाद दिया। इस तरह से सहस्र गीति पूरे तीन बार शुरू से अंत तक रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ में पढ़ा। तो तीसरी बार उन्होंने यह पढ़ लिया और सिखा लिया तो उनके मन में तीव्र इच्छा हुई स्वयं श्री शैल धाम में जाने के लिए, वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए। तो फिर वो अपने शिष्यों के संग वहां से निकल पड़े। चलते 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 पहले एक गांव में आए उस रात को, जिस गांव का नाम था देहली। और फिर वहां से अगली रात एक और गांव में आए जिसका नाम था अष्ट सहस्र, जहां पर रामानुजाचार्य के दो शिष्य रहते थे। एक का नाम था यज्ञेश, जो कि एक बहुत अमीर व्यापारी थे, और दूसरे का नाम था वरदाचार्य, जो कि बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हम यज्ञेश के घर में रहेंगे, वहां पे प्रसाद पाएंगे, क्योंकि हम इतने सारे हैं, शायद वरदाचार्य बहुत गरीब है, वो हमें प्रसाद नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने दो अपने शिष्यों को भेजा यज्ञेश के घर में। जब यज्ञेश ने खबर सुनी इन दो शिष्यों से कि उनके गुरु रामानुजाचार्य आ रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि जो रामानुजाचार्य के दो शिष्य थे, जो कि दूत के रूप में आए थे, उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना, उनको पानी पिलाना, यहां तक भी सब भूल गए और केवल अपने गुरु के आने की तैयारी करने लगे, भाग दौड़ चलने लगा, व्यवस्था करने लगे। तो ये जो शिष्य आए थे वो काफी दुखी हो गए, क्योंकि काफी दूर से एडवांस पर आए थे चल के चल के चल के, और अभी यज्ञेश के घर में आके उन्होंने पानी तक के लिए भी पूछा नहीं, भोजन की बात दूर है, विश्राम की बात दूर है। तो दुखी होकर वो वापस चले गए और रामानुजाचार्य को उन्होंने बताया जो हुआ। रामानुजाचार्य भी खुश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे शिष्यों के, वैष्णवों के वहां पे ठीक तरह से स्वागत नहीं हुआ, आदर सत्कार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे वरदाचार्य के घर में। तो जैसे वो वरदाचार्य के घर में पहुंचे तो वरदाचार्य वहां घर में नहीं थे। उनकी दिनचर्या ऐसे हुआ करती थी कि प्रातः काल में अपने संध्या वंदन और अन्य जो भी धार्मिक क्रियाएं रहती थी उनको समाप्त करके वो बाहर भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे, और फिर काफी देर से दोपहर के बाद जो भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता था वो लेकर वापस आ जाते थे। फिर पति पत्नी बैठकर वो भिक्षा को ग्रहण करते थे, दिन में एक बार खाते थे, जो भी आया उसे ग्रहण करते, नहीं आया तो उपवास करना। तो इस तरह से बहुत ही गरीब थे, घर में कुछ नहीं था। अब वरदाचार्य की पत्नी, उनका नाम था लक्ष्मी देवी। तो जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग में वरदाचार्य के घर में रहे आए तो वरदाचार्य बाहर भिक्षा मांगने के लिए गए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अकेले वहां पर थी। तो लक्ष्मी देवी बड़ी हड़बड़ा गई अपने गुरु और सबको देखकर, उनके शिष्यों को देखकर, लेकिन बहुत आनंद हुआ कि अरे मेरे गुरु मेरे घर में आ गए इतने शिष्यों को साथ में लेकर। तो जल्दी जल्दी से उनका स्वागत किया मीठे शब्दों से, उनको बिठाया और फिर उनकी सेवा के लिए पानी लाए, कहने कि आपके चरण धोने के लिए जल है, कृपया आनंद विश्रांति विश्राम कीजिए और यहाँ पर पास में एक तालाब है वहां पर जाके आप स्नान करके आ सकते हैं, तब तक मैं भगवान नारायण को के लिए भोग बनाती हूँ, भोग चढ़ाकर फिर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जब लक्ष्मी देवी रसोई घर में जाकर देखती है तो क्या देखती है कि एक दाना भी चावल का नहीं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या किया जाए, अभी उनके गुरु आए हैं, इतने सारे शिष्य आए हैं, वैष्णव आए हैं घर में, अभी उनको कुछ खिलाने के लिए नहीं, तो क्या परिस्थिति। अभी एक और अद्भुत लीला होने वाली है जिसकी भी नकल नहीं की जा सकती है। महान वैष्णवों के संग में जो लीलाएं होती हैं, कभी कभी ऐसी अद्भुत लीलाएं होती हैं जिनका नकल हम लोग नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी देवी ये बहुत सुंदर स्त्री थी, महिला थी, और जैसे अक्सर होता है कि जहां भी सुंदर महिला होती है तो अगर कोई अच्छे स्वभाव का पुरुष नहीं है उसका नजर लग जाता है उनके ऊपर। तो एक अमीर व्यापारी उस गांव में रहता था अष्ट सहस्त्र में, जिसकी बुरी नजर थी लक्ष्मी देवी के ऊपर, और कई बार उन्होंने महिला दूतों के माध्यम से लक्ष्मी देवी के सामने गलत प्रस्ताव रखे थे और कहा था कि तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारे घर में सब कुछ देने के लिए तैयार हूं लेकिन तुम्हें मुझे साथ आना होगा। लेकिन लक्ष्मी देवी जो है वो एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी, तो कभी भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन इस बार जब लक्ष्मी देवी यहां पर आ गई अपने रसोई घर में, उसने देखा कि क्या कर सकते हैं, अभी मेरे गुरु आए वैष्णव आए और उनका स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं मेरे घर में, तो क्या कर सकते हैं। फिर मन में विचार किया कि एक ही उपाय है, उस व्यापारी के घर में ही जाना चाहिए। तो वो व्यापारी के घर में गई, वो दुकान में बैठा था। फिर लक्ष्मी देवी ने उससे कहा कि आज मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रही हूं, मेरे घर में कई मेहमान आए हैं, मेरे गुरु आए हैं, साथ में वैष्णव आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूं, तो जो भी अच्छी तरह से उपयुक्त ढंग से उनका स्वागत करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो आप मेरे घर में भिजवा दीजिए और आज शाम को जबकि ये सब चले जाएंगे मैं आपके पास आऊंगी। तो व्यापारी बड़ा खुश हो गया, उसने तो अब तक आशा छोड़ दी थी क्योंकि कितने बार प्रस्ताव रखने के बाद भी लक्ष्मी देवी ने ठुकरा दिया था प्रस्ताव, और आज अचानक व्यापारी को लगा कि मेरा भाग्य खुल गया। तो उसने सारे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुएं सारे भेज दी अपने नौकरों के द्वारा, और लक्ष्मी देवी ने बड़ा सुंदर दावत तैयार किया, फिर भगवान नारायण को भोग चढ़ाया और तब तक स्नान वगैरह करके रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में वापस आ गए थे, और फिर लक्ष्मी देवी ने बड़े आदर से प्रेम से सारे वैष्णवों को प्रसाद खिलाया। रामानुजाचार्य उन्होंने वैष्णव इस प्रसाद को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतना गरीब घर और इतना ऐसे शानदार दावत प्रसाद। तो बड़े प्रसन्नता से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और जिस भाव से जिस आदर से लक्ष्मी देवी ने सबको प्रसाद बांटा उससे और प्रसन्न हुए। तो रामानुजाचार्य ने उनको हार्दिक आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए और अपने निवास स्थान में जहां रात को उनको निवास करना था उस गांव में वहां पर चले गए। तो उधर वरदाचार्य अपनी भिक्षा मांगकर लौट के चले आए और जब घर में आए तो अपने उनकी पत्नी ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने दावत उनको खिलाया, और तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको तो अच्छी तरह से मालूम था कि उनका घर उनके घर में कुछ नहीं है, कितने गरीब हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमारे गुरु महाराज को और हमारे गुरु भाइयों को इतने अच्छे ढंग से खिलाया, लेकिन ये सब आया कहां से। तो फिर लक्ष्मी देवी ने सब कुछ बता दिया कि मैं इस व्यापारी के पास गई थी क्योंकि ये काफी समय से मेरे पीछे लग रहा है, तो आज मैंने सोचा कि मेरे लिए कोई उपाय नहीं तो मुझे वहां पर जाना पड़ा। लक्ष्मी देवी ने घबरा घबरा कर ये बताया, कौन पत्नी है जो सामने से बोल सकती है अपने पति को ऐसे, तो काफी घबरा कर बोल रही थी। लेकिन आश्चर्य हुआ उनको ये देखकर कि वरदाचार्य बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन धन्य है। वैसे एकमात्र पुरुष इस सृष्टि में है नारायण, और बाकी सब प्रकृति है जो भोग्य वस्तु है, भोक्ता केवल नारायण है और नारायण के ही प्रतिनिधि है श्री गुरु। इसलिए तुमने श्री गुरु के लिए ऐसे किया, इसलिए मैं मानता हूं कि तुम सबसे बड़ी धर्म परायण पतिव्रता स्त्री हो। फिर दोनों अनंताचार्य क्षमा कीजिए वरदाचार्य और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी रामानुजी का उपचार्य के पास गईं और उन्हें सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ और आज लक्ष्मी देवी को वहां जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य ने सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि कोई बात नहीं, यही जो प्रसाद है, मतलब रामानुजाचार्य का महाप्रसाद, कहा कि ये सब प्रसाद लेकर जाओ आज साथ में, अभी निकलो वहां उस व्यापारी के घर में जाओ, सबसे पहले उसे ये प्रसाद खिलाओ। तो फिर वरदाचार्य अपनी पत्नी को लेकर वहां गए व्यापारी के घर में। वरदाचार्य बाहर खड़े रहे, लक्ष्मी देवी अंदर गई, सबसे पहले उन्होंने प्रसाद खिलाया उस व्यापारी को। महाप्रसाद वैसे भी बहुत शक्तिशाली है और जब कोई भक्त उसे ग्रहण करता है जैसे कि रामानुजाचार्य ऐसे शुद्ध भक्त, तो वो और भी शक्तिशाली हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। तो जब ये प्रसाद, ये महाप्रसाद उस व्यापारी ने खाया, खाते खाते बहुत स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा, खाते 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 उसका हृदय शुद्ध होने लगा और जब उसने प्रसाद का सेवन करना समाप्त किया तो उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। अब उसके मन में बहुत पश्चाताप की अग्नि जलने लगी और फिर क्षमा याचना करने लगा लक्ष्मी देवी के सामने, कहने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी था, कि मेरी दशा क्या होती मैं कल्पना नहीं कर सकता था। शायद वही दशा होती जो कि उस शिकारी की थी जो कि गलत दृष्टि से दमयंती के पास में आया था। मैं भी इतना ही पापी व्यक्ति हूं, लेकिन अभी मैं केवल आपकी और एक माता की दृष्टि से देख रहा हूं, बस मेरे मन में अभी और कोई दृष्टि नहीं रही आपके प्रति, तो मुझे जो भी दंड है वो मुझे आप देना। दोनों लक्ष्मी देवी और वरदाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये चमत्कार। फिर उन दोनों ने उस व्यापारी को रामानुजाचार्य के पास में लाया और रामानुजाचार्य ने उनको स्पर्श किया, आशीर्वाद किया, आलिंगन किया और उस समय वो व्यापारी बहुत पश्चाताप कर रहा था और उसने क्षमा याचना की रामानुजाचार्य से और उसके सारे भौतिक इच्छाएं चली गई। उस समय उसने दीक्षा के लिए प्रार्थना की रामानुजाचार्य से और रामानुजाचार्य ने उस बात को स्वीकार भी किया। उस समय उस व्यापारी ने, क्योंकि उसके मन में बहुत पश्चाताप हो रहा था, तो बहुत बड़ा रकम जो है पैसे का वो वरदराज और उसकी पत्नी को देना चाहा क्योंकि वो बहुत गरीब थे, ताकि उनका घर चलाने के लिए। रामानुजाचार्य ने यह भी कहा उनसे, वरदाचार्य से, कि आप ले सकते हो आप चाहिए तो, ये दे रहा है आपकी सेवा में, कम से कम आप अच्छी तरह से खा पी सकते हो रोज। तो वरदाचार्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए रामानुजाचार्य से कहा कि आप मुझे ऐसे दुर्घटना में जाने के लिए आप मत बोलिए, आप मुझे अमीर आदमी मत बनाइए, क्योंकि पैसा ही सारे गलत कामों का, पापों का मूल है। इसलिए जैसे हम जी रहे हैं हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और आपकी कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें और क्या चाहिए जीवन में। तो रामानुजाचार्य इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय जो उनके दूसरे शिष्य थे अष्ट सहस्र में वरदाचार्य, वो वहां पर चले आए, यज्ञेश, क्षमा कीजिए, यज्ञेश वहां थे, वो चले आए और उनको लगा था कि मेरा कोई बड़ा अपराध हो गया है गुरु के प्रति, इसलिए गुरु मेरे घर में आना चाहते थे लेकिन नहीं आए और वरदाचार्य के घर में चले गए। तो रोते रोते आए रामानुजाचार्य के पास, दंडवत प्रणाम किया। तो रामानुजाचार्य ने कहा उनसे मैं तुम्हारे घर में नहीं आया इसलिए तुम बहुत दुखी हो ना, लेकिन चिंता नहीं करो। लेकिन याद रखो कि जब वैष्णव हमारे घर में आते हैं तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए। अगर गुरु की सेवा के लिए भी तुमने अगर शिष्यों का भी निरादर किया तो ये अच्छा नहीं होता है। मेरे दो शिष्य तुम्हारे पास आए थे ये बताने के लिए कि हम सब आ रहे हैं, लेकिन तुमने उनको पानी तक नहीं पिलाया, उनका बिल्कुल स्वागत करने की बात दूर है, दो मीठे शब्द भी नहीं बोले उनको। तो वैष्णवों का निरादर करना ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न कैसे करेगा? उस समय यज्ञेश कहने लगा कि हे गुरु महाराज, ये यकीन कीजिए कि मैंने अगर उनका निरादर किया तो मेरे धन के घमंड से नहीं किया, केवल जब मैंने खबर सुनी कि आप मेरे घर में आ रहे हैं मैं इतना खुश हो गया कि बस मैं बाकी सब कुछ भूल गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर वो रोने लगा। उस समय रामानुजाचार्य ने आलिंगन किया और फिर उनसे कहने लगा कि चिंता नहीं करो, अब मैं जा रहा हूं श्री शैलधाम, जब मैं लौट के आऊंगा तो उस समय मैं तुम्हारे यहां प्रसाद ग्रहण करूंगा। इससे हम जान सकते हैं कि वैष्णव सभ्यता में वैष्णवों की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम जो महान वैष्णव है उन्हीं की सेवा करनी चाहिए और जो साधारण वैष्णव है उनकी सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक वैष्णव की सेवा हमें करनी चाहिए दास भावना में, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि हम साधारण से साधारण भक्तों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, हम महान वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो तो भगवान देखते ही हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि साधारण वैष्णवों के साथ क्या हम घमंड से बात करते हैं, क्या हम उनका निरादर करते हैं, क्या हम उनको साधारण लोग समझते हैं, ये भी भगवान देखते हैं। खास करके रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कई बार यहां इस मंदिर में आप सुन चुके होंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने दो सिद्धांतों को चारों संप्रदायों से स्वीकार किया और इनसे ये गौड़ीय संप्रदाय बन गया। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय निराला ही है, ऐसे दो दो सिद्धांत स्वीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन केवल इस बात को बताने के लिए कि ये चार संप्रदाय प्रामाणिक हैं और इन चार संप्रदायों में से ही कोई किसी को आना चाहिए, इस बात को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया था। तो दो कौन से सिद्धांत थे जो कि उन्होंने रामानुज संप्रदाय से लिया? एक कर्म मिश्र या कर्म शुद्ध कर्म मुक्त भक्ति, मतलब जिस भक्ति में शुद्ध भक्ति में कोई कर्म का मिश्रण नहीं हो, योग का मिश्रण नहीं हो, ज्ञान का मिश्रण नहीं हो, शुद्ध भक्ति, ये एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत था वैष्णव सेवा। हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य के लीलाओं में इतने हम एकादशी से चर्चा करते आए हैं, ये एक बात हमेशा हम देखते आए हैं कि वैष्णव सेवा कैसे करनी चाहिए, बार बार ये बात उठती है। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम जब वैष्णव भक्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो वैष्णव समाज के अलावा रहकर हम नहीं कर सकते, ये असंभव है, न केवल कठिन असंभव है। इसलिए जब हम वैष्णवों के बिना रह नहीं सकते, उनके बिना भक्ति नहीं कर सकते, हम वैष्णवों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, साधारण से साधारण वैष्णव के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ में प्रेम से रहें, क्यों ना हम उनके साथ में अहंकार को त्याग कर हम सेवा भावना में रहें, हर वैष्णव को अपना प्रभु मानकर। प्रभुपाद एक बार एक चुटकुला सुना रहे थे, वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि देखो आप सबको एक दूसरे को प्रभु कहकर पुकारना चाहिए, क्योंकि आप दास हैं इसलिए आपका नाम फलाना फलाना दास आया है, कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, और दूसरे जो हैं वो आपके प्रभु हैं, तो जब आप भक्तों के साथ बर्ताव करते हैं तो आपको लगना चाहिए कि ये मेरे प्रभु हैं, ऐसा नहीं कि केवल नाम के वास्ते उनको प्रभु बुलाया और फिर वो नकल करने लगे एक भक्त की ऐसे मजाक में, नंद गोपाल प्रभु इधर आओ मेरे जूते साफ करो, बोले ये प्रभु ऐसा प्रभु नहीं, दूसरों को इस तरह का प्रभु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें उनका दास बनना चाहिए। तो ये चीज वैष्णव मार्ग में पंथ में बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम वैष्णवों के सामने नम्राति नम्र नहीं होते हैं, हम उनके दास नहीं होते, हम भक्ति को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, असंभव है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने यह कितना आसान बना दिया है। जो व्यक्ति केवल वैष्णवों की सेवा करेगा वो सारी सफलता को प्राप्त कर देगा, कुछ भी चीज रहेगा नहीं उसके लिए, उसको ज्ञान आ जाएगा, रुचि आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, वो विद्वान हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा केवल वैष्णवों की सेवा करने से। यहां तक कि उसको कृष्ण कथा में बहुत रुचि आ जाएगी, जैसे कि भागवत में बताया जाता है, शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कि जो व्यक्ति ऐसे भक्तों की सेवा करते रहता है उसके अंदर वासुदेव की कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, जो बड़े ध्यान से श्रद्धा से उनकी सेवा करता है। ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी है, बस कर्तव्य है, करना है तो कर लिया, नहीं, बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम से हमको सेवा करना चाहिए। इस तरह से रामानुजाचार्य ने भी इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, और आगे आने वाले लीलाओं में भी हम देखेंगे कि कैसे बार बार रामानुजाचार्य इस बात के ऊपर जोर दिया करते थे। तो खैर, यज्ञेश को ऐसे उन्होंने सांत्वना दी और फिर वहां से वो आगे रवाना हुए। वहां से निकल गए अष्ट सहस्र से, चलते चलते आगे चले, कांचीपुरम में पहुंचे। कांचीपुरम में कौन विराजे हैं, हम अगली एकादशी में चर्चा कर रहे थे, हाँ, वरदराज भगवान, वर प्रदान करने वालों के राजा भगवान श्री कृष्ण, वरद राज, वर द राज। तो वरदराज जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा प्राचीन पुराना मंदिर है कांचीपुरम में। आपने कांचीपुरम का नाम सुना होगा, कांचीपुरम साड़ी, कांचीपुरम ये बहुत काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कितने भक्त जानते हैं कि वरदराज है कांचीपुरम में, है ना। तो जगह की प्रसिद्धि हमें केवल ऐसे चीजों से नहीं जाननी चाहिए, ये प्रसिद्ध साड़ी मिलती है, लेकिन वरदराज वहां है उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। कांचीपुरम, अच्छा जहां वरदराज रहते हैं, हाँ, ऐसे पहचान होना चाहिए। यह नहीं कि कांचीपुरम, अच्छा जहां अच्छे साड़ी बनते हैं वो क्या, नहीं, कांचीपुरम कहें तो वरदराज का स्मरण आना चाहिए। तो वहां पर वरदराज के शुद्ध भक्त रहा करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, जो कि गुरु समान थे रामानुजाचार्य के लिए। जबकि रामानुजाचार्य एक छोटे बालक थे तब से कांचीपूर्ण का वो संग किया करते थे, कांचीपूर्ण उनको कृष्ण कथा सुनाया करते थे, इसलिए बड़ा आदर और प्रेम था रामानुजाचार्य के मन में कांचीपूर्ण के प्रति। तो यहां भी जब वो अपने शिष्यों के साथ में आए, उन्होंने तीन दिन कांचीपूर्ण में कांचीपूर्ण का संग लिया, उनसे कृष्ण कथा सुनी और फिर आगे चले गए, कपिल तीर्थ में पहुंचे, वहां थोड़ी देर के लिए रहे और आगे चलते चलते बाद में श्री शैला तक पहुंच गए। जब श्री शैला में आ गए तो तिरुमला के, मतलब तिरुमला तो ऊपर स्थान है ना, आप जानते हैं, फिर पर्वत है, तो वेंकटाचल, आप सब तिरुपति गए हुए हैं, वेंकट, वेंकट आप जानते हैं क्या है, वेंकट, वेंकट शब्द का अर्थ क्या है, अचल, चलो अचल मतलब पहाड़, वहां भगवान को वेंकट रमन बोलते हैं या वेंकटेश्वर बोलते हैं, तो उस पर्वत को वेंकटाचल बोलते हैं, वेंकट जो पापों को नष्ट करते हैं, इसलिए वेंकटेश्वर हैं पापों को नष्ट करने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले। तो जब उस पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए रामानुजाचार्य, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो इतना पवित्र स्थान है, ये तो भगवान से अभिन्न है, और इस पर पैर रखना तो मेरे लिए बड़ा अपराध हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ वहीं पर रह गए नीचे ही, और वहीं से वेंकटेश्वर भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रामानुजाचार्य तो बड़े प्रसिद्ध से सारे दक्षिण भारत में, तो जब ऊपर पुजारियों को, अन्य साधुओं को, भक्तों को पता चला कि रामानुजाचार्य नीचे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो कई साधु और अन्य भक्त वहां पर चले आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि अरे यतिराज, हे रामानुजाचार्य, अगर आप इस पहाड़ के ऊपर चल के वेंकटेश्वर जी का दर्शन करने नहीं आएंगे ये सोचकर कि यह अपराध हो जाएगा, तो फिर आपके तरह सभी लोग करेंगे, फिर कोई भक्त आगे चलेंगे नहीं ऊपर, फिर ऐसा भी समय आएगा कि वहां ऊपर जो पूजा करने वाले पुजारी वो भी नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये ठीक नहीं होगा। और वैसे भी सच्चे तीर्थ स्थान तो आप जैसे भक्त हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान निवास करते हैं सदा। आज जहां भी आप जाते हैं वही तीर्थ स्थान है। ये बात युधिष्ठिर महाराज भी विदुर को बताते हैं ना श्रीमद् भागवत में, कि आप जैसे जो शुद्ध भक्त हैं आप स्वयं तीर्थ स्थान है। हरे कृष्णा। ठीक है, भगवद्विदा भागवतस तीर्थभूत स्वयं विभो, आप तो स्वयं तीर्थ स्थान है। और इतना ही नहीं, तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, कि आप तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं। क्योंकि आप जैसे भक्त कोई तीर्थ स्थान में कोई जगह में जाता है तो वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, और तीर्थ स्थान का महत्व केवल आप जैसे साधुओं के वहां निवास करने से हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है? स्व अंतःस्थेन गदाभृता, क्योंकि आपके अंतःकरण में स्व अंतःस्थेन गदाभृता, गदाभृता मतलब गदाधारी श्री विष्णु भगवान निवास करते हैं। तो इसी बात को सारे साधुओं ने रामानुजाचार्य से कहा, फिर रामानुजाचार्य ऊपर चले गए। और वहां चलते चलते, वैसे हम जब तिरुपति गए थे तो हमने सुना था, कोई एक भक्त बता रहे थे कि रामानुजाचार्य अपने घुटनों पर चल के गए, अपने पैरों पर चले लेकिन घुटनों पर चल के गए। लेकिन ये कितनी प्रामाणिक बात है वो अभी पूछताछ करके देखना होगा। लेकिन खैर जो भी बात है, वो चले तो गए ऊपर, और जब वेंकटेश्वर भगवान के सामने आए तो सुंदर रूप भगवान का देखा और इतने भाव भोर हो गए, उनके आंखों में आंसू, आंखों से आंसू बहने लगे, और सुंदर प्रार्थना अर्पण करते करते वो बेहोश हो पड़े, और उनके अंदर जो भक्ति के लक्षण होते हैं वो सब प्रकट होने लगे। और उस समय फिर सारे पुजारी वहां के आए, थोड़ी देर बाद रामानुजाचार्य बाहरी चेतना पर लौट के आए, परिक्रमा की उन्होंने विग्रह की, सुंदर दर्शन किया वहां पर, भगवान का गुणगान किया, सुंदर भजन गाए। फिर वहां के पुजारियों ने आकर बहुत सारा महाप्रसाद रामानुजाचार्य को दिया, तो सारे शिष्यों ने साथ में मिलकर फिर ये प्रसाद ग्रहण किया। पूरे तीन दिन वहां पर रामानुजाचार्य ऊपर तिरुमला में रहे, वेंकटरमण जी वेंकटेश्वर का दर्शन करते करते। और इसी स्थान में उस समय रामानुजाचार्य के जो भाई थे गोविंद, वो वहां पर चले आए। आपको याद होगा गोविंद के बारे में? क्या याद है आपको गोविंद के बारे में? वो शिवजी के भक्त बने थे, कहां रहते थे? कालहस्ती में। उसके पहले क्या हुआ गोविंद ने, आपको याद होगा, जबकि पहले जो गुरु थे रामानुजाचार्य के, जिनका नाम क्या था? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश ने जब देखा, यादव प्रकाश तो मायावादी थे, जब यादव प्रकाश ने देखा कि मेरा शिष्य रामानुजाचार्य हालांकि इतना छोटा बालक है लेकिन इतना बुद्धिमान है कि मेरे मायावादी सिद्धांतों का इतनी अच्छी तरह से खंडन कर रहा है कि मेरे लिए खतरा बन गया है ये, और यहां तक कि मायावाद तो यहां समाप्त हो जाएगा अगर ये लड़का अच्छा आगे चलता गया तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ में षड्यंत्र रचा था। क्या षड्यंत्र था वो? कि वो गंगा जी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए यात्रा में जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए, और तीर्थ यात्रा के दौरान रामानुजाचार्य को खत्म कर देंगे, और जब लौट के आएंगे सबको क्या बताएंगे कि कहीं वो गंगा जी में डूब गया। लेकिन उस समय किसने बचाया रामानुजाचार्य को? गोविंद। गोविंद की मां का नाम था दीप्तिमती, रामानुजाचार्य की मां का नाम था कांतिमती, दोनों बहनें थीं। तो गोविंद ने बताया कि मैंने शिष्यों से ऐसे ऐसे सुना है, तो रामानुजाचार्य को बहुत धक्का लगा हृदय पे कि मेरे गुरु मेरी हत्या करना चाहते हैं, ऐसी कभी बात की कल्पना नहीं की थी उन्होंने। फिर वहां से भाग गए, और फिर आपको याद है वो सुंदर कहानी कैसे कैसे वो वापस चले आए, फिर स्वयं भगवान वहां शिकारी के रूप में आए वगैरह वो कहानी। लेकिन गोविंद आगे चले गए, रामानुजाचार्य आए यहां पर वापस कांचीपुरम में, लेकिन गोविंद आगे चले गए, और लौटते वक्त वो कालहस्ती नाम के स्थान में रुक गए जो कि श्री शैल या तिरुपति के पास में है। वो एक शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो गोविंद वहां रह गए और शिव जी की उपासना करते करते वहीं पर रह गए, वापस नहीं आए। फिर आगे चल के जब रामानुजाचार्य श्रीरंग में आए, वहां के आचार्य बन गए, तो वो गोविंद की याद कर रहे थे। तो उन्होंने अपने मामा जिनका नाम था, किसी को याद है, कांतिमती और दीप्तिमती के भाई का नाम क्या था, जो कि एक सन्यासी थे, यमुनाचार्य के शिष्य थे, शैलपूर्ण, श्री शैलपूर्ण, जो कि श्री शैल में निवास करते थे, जहां पर अब रामानुजाचार्य आए थे, वहां निवास करते थे। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखा कि कृपया आप गोविंद को वैष्णव बनाइए। तो श्री शैलपूर्ण कालहस्ती में गए थे, कालहस्ती में जाकर उन्होंने गोविंद को वैष्णव बनाया था। कैसे वैष्णव बनाया था, इस कथा भी हम सुन चुके हैं। और फिर वो श्री शैलपूर्ण के साथ में वहां पर रहे थे। तो यही शैलपूर्ण, जबकि रामानुजाचार्य ऊपर चढ़ते जा रहे थे वेंकटेश्वर का, भगवान का दर्शन करने के लिए, यही शैलपूर्ण उनको प्रसाद लेकर आए थे रास्ते में, क्योंकि चलते चलते काफी लंबी यात्रा है और काफी थके हुए थे, भूखे प्यासे थे। उस समय शैलपूर्ण स्वयं रामानुजाचार्य को प्रसाद देकर आए थे और रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा था कि आप यहाँ आए, आप तो हमारे लिए इतने आदरणीय हैं, पूजनीय हमारे लिए हैं, आराध्य हैं हमारे लिए, गुरु समान हैं, और आप यहाँ एक ऐसी साधारण सेवा हमारे लिए कर रहे हैं, जो एक छोटे से बच्चे को भी आपने भेज दिया होता ये प्रसाद हमको देने के लिए। तो फिर शैलपूर्ण उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैंने सोचा कि सबसे साधारण व्यक्ति कौन है, सबसे तुच्छ व्यक्ति कौन है, फिर मैंने विश्लेषण करके देखा कि वो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही वो प्रसाद लाकर अभी दे रहा हूं। तो रामानुजाचार्य ने पहचान ले कि उनके मामा जो भी सन्यासी हैं शैलपूर्ण, कितने महान हैं, कितने उनके अंदर वैष्णव गुण हैं, और वैष्णव गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है नम्रता। तो उन्होंने अपने मामा के अंदर ये गुण देखे, बड़े प्रसन्न हुए इस गुण को देखकर। तो खैर, गोविंद शैलपूर्ण के साथ में रहा करते थे श्री शैल में। तो इस समय गोविंद भी वहां पर पहुंच गए जहां रामानुजाचार्य ऊपर तिरुमला में थे। रामानुजाचार्य बहुत सालों के बाद गोविंद से मिले, जब से कि वो बिछड़ गए थे जंगल में, उसके बाद वो कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो बड़े खुश हुए दोनों भाई, आपस में मिलकर आलिंगन किया, और फिर थोड़े समय के लिए वहां पर गोविंद उनके साथ में रह गए। अब जब रामानुजाचार्य श्री शैल वापस लौट के आए, तो श्री शैलपूर्ण के आश्रम में आए, और वो भी श्री शैलपूर्ण का संग लेना चाहते थे। तो वहां पर पूरा एक साल रहे रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में, और इस एक साल के दौरान श्री शैलपूर्ण ने रामायण की कथा की, और शुरू से अंत तक वो रामायण का श्लोक पढ़ते और उसके ऊपर टीका करते। इस तरह से रामानुजाचार्य ने श्री शैलपूर्ण के मुखारविंद से श्री रामायण सुन लिया एक साल में। और फिर जब एक साल बीत गया, तो फिर वो आशीर्वाद मांगने के लिए आ गए श्री शैलपूर्ण के साथ कि हमें अनुमति दीजिए, हम वापस श्रीरंगम जाना चाहते हैं। तो श्री शैलपूर्ण कहने लगे, हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारा संग पाकर यहाँ पर, ठीक है अभी तुम्हारे लिए समय हो गया, चले जाओ, लेकिन अगर तुम कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांगो, अगर मेरे क्षमता में है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं, और वो है मेरा भाई गोविंद, कृपया गोविंद को आप मेरे साथ भेज दीजिए। तो तुरंत शैलपूर्ण ने खुशी से कहा कि अवश्य ले जाओ गोविंद को। तो गोविंद भी रामानुजाचार्य के साथ में आए, और फिर चलते चलते वहां से वो निकल पड़े। और उसी दौरान जब लौटते लौटते वापस वो आ गए थे, तो धीरे धीरे से कांचीपुरम वापस लौट के फिर से आए। वहां पर फिर से कांचीपूर्ण का संग किया। उन्होंने कांचीपूर्ण से कहा कि ये है मेरा भाई गोविंद, कृपया इसके ऊपर आप आशीर्वाद कीजिए, और अपने गुरु की सेवा करते रहे, और सारे प्राणियों के ऊपर कृपा दृष्टि रखे, ये आशीर्वाद दीजिए। तो कांचीपूर्ण ने कहा कि हे रामानुज, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होती है वो भगवान पूर्ण करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तुम आशीर्वाद देना चाहते हो, भगवान अवश्य उसके ऊपर कृपा करेंगे।
तो तुम गोविंद के बारे में चिंता नहीं करना, परंतु इसका चेहरा देखकर मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि ये अपने गुरु से दूर रहकर बहुत विरह की भावना की अनुभूति कर रहा है, बहुत दुखी है, इसलिए अपने गुरु के पास इसे वापस भेज दो, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। तो तुरंत रामानुज ने गोविंद को फिर से अपने गुरु के पास वापस भेज दिया। अब गोविंद की गुरु निष्ठा बहुत थी, लेकिन गोविंद के कार्यकलाप भी कभी कभी लोगों को भ्रमित कराने वाले थे। जब रामानुजाचार्य एक साल श्री शैलपूर्ण के आश्रम में रहे थे, उन्होंने एक दो बार ऐसे कई अद्भुत घटनाएं देखी थी गोविंद के बारे में। एक बार हुआ ये कि गोविंद अपने गुरु श्री शैलपूर्ण के लिए हमेशा रात को सोने के पहले वो गुरु का बिस्तर बनाया करते थे। और फिर एक बार रामानुजाचार्य ने देखा कि वो बनाते हैं और फिर उसके ऊपर सो जाते हैं थोड़ी देर गोविंद, फिर सो के उठ के फिर चले जाते, ऐसे रोज करने लगा। फिर रामानुजाचार्य कहने लगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, गुरु का बिस्तर बनाना, फिर गुरु के बिस्तर पर सो जाना, फिर चले जाना, फिर गुरु आके सो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने जाकर श्री शैलपूर्ण से कहा कि देखो गोविंद ऐसे ऐसे कर रहा है। तो शैलपूर्ण ने बुलाया, अरे गोविंद तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा बिस्तर बनाते हो फिर उसके ऊपर सो जाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गुरु के बिस्तर के ऊपर सोने से क्या होता है? तो गोविंद ने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो नरक जाने से डरते नहीं हो तुम? तो मालूम है तो फिर क्यों करते हो? फिर वो कहने लगा कि देखिए गुरु महाराज, ऐसे बात है कि जब मैं बिस्तर बनाता हूं तो मैं देखना चाहता हूं कि आपके लिए ये सुविधाजनक होगा, अच्छा होगा कि नहीं, कहीं कुछ बीच में कुछ ऐसे आ गया जिससे आपको चुभेगा आपके पीठ में, इसलिए मैं खुद वहां लेट जाता हूं, देखता हूं कि ठीक ठाक है, सुविधाजनक है कि नहीं, और फिर मैं उठ जाता हूं। जब मैं मुझे पता चलता है कि आपको यहां आराम की नींद मिलेगी तब मैं उठ जाता हूं। तो अगर आपके आराम से अगर मुझे नरक जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। तब ये श्री शैलपुर ने सुना, उनको भी आश्चर्य हुआ, और जब रामानुजाचार्य ने सुना तो उनको और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने आलिंगन किया गोविंद से, कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत गलत समझा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गुरु निष्ठा कितनी है मैं तुमको पहचान नहीं पाया था। जैसे ऐसे कई घटनाएं होती हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ में भी हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु के सेवक का नाम भी गोविंद ही था। हाँ देखिए भगवान का इंतजाम। आप में से जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे, आप जानते हैं कि जिस स्थान में चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे उस स्थान का नाम क्या था? गंभीरा। तो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, छोटा सा कमरा था। और जब दोपहर में लौट के आते, प्रातः काल से बाहर रहते, दर्शन संकीर्तन इत्यादि कर करके जब आ जाते, दोपहर को प्रसाद लेते, और प्रसाद के बाद एक 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए लेट जाते, क्योंकि वह रात भर सोते नहीं, रात भर वो भगवान का नाम लेते रहते। तो एक बार, और ये प्रथा थी कि गोविंद आके फिर उनके चरणों का मालिश करता था। एक बार हुआ ये कि चैतन्य महाप्रभु दरवाजे के सामने ही सो गए, तो बिल्कुल ऐसे सो गए कि कोई दरवाजे के अंदर से नहीं जा सकता था उनके कमरे में, अगर किसी को जाना पड़ता तो उनके शरीर के ऊपर लांग के जाना पड़ता। किसी भी आदमी के ऊपर, शरीर के ऊपर लांग के जाना अच्छी बात नहीं है, किसी भक्त के ऊपर से जाना और भी बुरी बात है, बड़ा अपराध हो जाता है, और स्वयं भगवान के ऊपर से लांग के जाना तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन गोविंद ने दो तीन बार कहा कि जरा उठिए, इस साइड में होइए, मैं अंदर जाना चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नींद में कहने, नहीं मैं बहुत थक गया हूं, रहने दो, चले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे उत्तर देते रहे। फिर बाद में गोविंद ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर अपना कपड़ा रखा और फिर जल्दी से कूद कर उस ओर चले गए, अंदर जाके फिर आराम से जी भर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मालिश करने लगे। फिर जब तक चैतन्य महाप्रभु तो तुम मेरे शरीर के ऊपर से नहीं जाना चाहते थे, यही काम है क्या? तो गोविंद ने कुछ जवाब नहीं दिया, सर नीचे किया। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि यही कारण था। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि देखो
تم جب اندر آئے تو میرے شریر کے اوپر سے لانگ کے چلے گئے، تو واپس باہر جاتے سمے کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس میں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار اندر آتے ٹائم کیا تو باہر جاتے ٹائم بھی کرنا چاہیے تھا. تو پھر گووند نے جواب دیا کہ پربھو، کہ جب میں اندر آ رہا تھا تو میں نے یہ اپرادھ کیا، آپ کے شریر کے اوپر سے میں لانگ کے چلا گیا، لیکن وہ آپ کی سیوا کے لیے تھا. لیکن اس بار اگر آپ کے شریر کے اوپر لانگ کے مجھے جانا پڑتا تو وہ میں میرے سیوا کے لیے، میری اندر تپتی کے لیے تھا، مجھے پرساد سیون کرنے کے لیے. اس لیے میں نے سوچا یہ اپرادھ میں میرے اندر تپتی کے لیے نہیں کر سکتا. اگر آپ کے سیوا کے لیے، آپ کے سویدھا کے لیے، آرام کے لیے اگر مجھے نرک جانا پڑے اس کے لیے میں تیار تھا، لیکن میری اندر تپتی کے لیے میں ایسے اپرادھ کیوں کروں؟ پھر چیتنیہ مہاپربھو بہت پرسن ہو گئے. تو اسی طرح کی بھاونا یہ گووند کی بھی تھی. اور ایک بار جب رامانوجاچاریہ نے گووند کے ساتھ ایک ایسا ادبھت درشی دیکھا کہ گووند نے آشرم کے پٹانگن میں ایک بار ایک سانپ کو بائیں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا تھا اور اپنے داہنی انگلی سانپ کے گلے میں منہ کھول کر اندر گلے میں گھسا رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سانپ کو اتنا درد ہو رہا ہے کہ پرائے وہ مرنے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پشوؤں کو کشت دینا پسند کرتے ہیں، کچھ پکڑتے ہیں، کسی کچھ کشت دیتے ہیں. تو پھر رامانوجاچاریہ نے دیکھا، پھر گووند کے پاس آئے، بولنے لگے کہ ارے گووند تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا تم نہیں جانتے ابھی تک تمہارا کیول بھاگیہ ہے کہ یہ سانپ نے کاٹا نہیں تمہیں، کچھ نہیں ہوا؟ ایسا کرور کاریہ کیوں کرتے ہو جس سے کہ تمہیں بھی خطرہ ہے اور اس کے لیے بھی ایک نشپاپ پرانے کے اوپر تم ایسے کرور کاریہ کرتے ہو، اس کو کشٹ دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو گووند کہنے لگا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب میں آیا یہاں تو یہ سانپ بہت تڑپ رہا تھا، اس نے کچھ کھایا تھا اور اس کھانے میں کچھ کانٹا تھا، یہ کانٹا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا، اس لیے میں اس کو پکڑ کے وہ کانٹا نکال رہا ہوں. ابھی کانٹا نکال دیا ہے، اب کیونکہ اس کانٹے کی وجہ سے اور نکالنے کے سمے اس کو اتنی تھکاون ہو گئی ہے کہ ابھی تھوڑا تھک گیا ہے، لیکن کیونکہ کانٹا نکل گیا ہے ابھی دھیرے سے شکتی آ جائے گی، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. پھر رامانوجاچاریہ نے سنا، کہا کہ ارے، پھر سے کشما یاچنا کی گووند سے. تو اس طرح سے گووند کے ادبھت کاریہ تھے وہاں پر. تو یہ گووند اب گرو کے بنا رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنا لگاؤ تھا گرو کے پرتی. تو کانچی پورن کے کہنے پر پھر رامانوجاچاریہ نے ان کو واپس بھیج دیا. لیکن جب واپس وہ شری شیل چلے آئے تو شری شیل پورن نے ان کی اور دیکھا بھی نہیں، اور وہاں ان کو پوچھا، وہ آئے وہاں پر آشرم میں، گھر میں آئے، جب اوروں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ بات نہیں کر رہے ہیں گووند سے، ان کی اور دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، کم سے کم بھوجن پرساد تو ان کو کھلا سکتے ہیں، اس کو بھوکا نہیں رکھے. پھر شری شیلپور نے اتر دیا کہ ایک بار نہیں، میرا کرتویہ ایک بکے ہوئے گھوڑے کو کھلانا نہیں ہے. جب اس کا نیا مالک ہو گیا ہے گھوڑے کا، تو ابھی اس گھوڑے کو کھلانا میرا کرتویہ کیسے ہوتا ہے؟ تو باہر اس سمے گووند سن رہے تھے اس بات کو. تو اپنے گرو کی اچھا جان لی کہ میرے گرو چاہتے ہیں کہ میں رامانوجاچاریہ کے پاس ہی رہوں، اور گرو نے کہا ہے کہ وہ میرے مالک ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو ایک نئے مالک کو بیچ دیا، مطلب رامانوج میرے مالک ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ششیہ گرو کا گھوڑا ہو جاتا ہے. گھوڑا کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، مطلب سیوا کرتا ہے گرو کی. تو اس طرح سے وہ واپس وہاں سے چلے گئے اور سیدھے آئے رامانوج کے پاس اور کہنے لگے کہ میں آپ کا سیوک ہوں، آپ میرے پربھو ہیں، بس مجھے یہ آدیش ملا ہے اور میں آپ کے سانندھی میں رہنا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے گووند پھر سے ابھی رامانوج کی سیوا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور لوٹتے لوٹتے پھر سے وہ اشٹ سہسر میں آ گئے. اس بار اس امیر ویاپاری یگنیش، جو کہ رامانوجاچاریہ کے شیشی تھے، ان کے گھر میں رہے، ان کو اس بار انہوں نے سنتوشت کیا، اور دھیرے دھیرے سے پھر آگے چلے واپس شری رنگم میں پہنچ گئے، جہاں کی سبھی لوگوں نے ان کا بہت سواگت کیا. تو گووند نے अपने प्रभु रामानुजाचार्य की सेवा करना आरंभ किया। लेकिन गोविंद के गुण ये थे कि जो भी वो कार्य करते थे इतने प्रामाणिक ढंग से करते थे, इतने अच्छे ढंग से करते थे, अपना हृदय लगाकर करते थे। अब उन्होंने जब रामानुजाचार्य की सेवा स्वीकार की अपने गुरु के आदेश अनुसार, तो वो भी इतने अच्छे ढंग से करने लगे, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते थे, एक आदर्श सेवक। इसका मतलब है कि हमें एक प्रेरणा है, हम सब सेवक हैं, भक्त मतलब दास, दास मतलब सेवक। सेवा करनी है तो कैसे करनी है, ये हम गोविंद के उदाहरण से भी देख सकते हैं। छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, मध्यम वर्ग की सेवा हो, कोई बात नहीं, जो भी सेवा हमको दी जाती है इतने हृदय से हमको करना चाहिए कि मानो हमारा जीवन इसके ऊपर निर्भर होता है। अगर हम मंदिर साफ कर रहे हैं तो ऐसे स्वच्छ करना चाहिए मंदिर को कि कण कण का ख्याल रखना चाहिए। बस अगर हम आराम से लापरवाही से बस झाड़ू घुमाएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम सब्जी काट रहे हैं भगवान के लिए तो इतने ध्यान से सब्जी काटना चाहिए, इतने प्रेम भावना से काटना चाहिए कि ये कृष्ण को अर्पण किया जाने वाला है, ये कृष्ण के लिए भोग बनाया जा रहा है, ये आलू साधारण आलू नहीं है, ये अभी चिन्मय होने वाला है, जब हम भगवान को अर्पण करेंगे भगवान इसको स्वीकार करेंगे। यह हम आरती कर रहे हैं, भगवान को भोग दिखा रहे हैं, तो बड़े भक्ति भाव से। अगर हम वैष्णवों को प्रसाद खिला रहे हैं, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी सेवा हम लेते हैं भगवान के लिए, छोटी हो या बड़ी, बड़े हृदय से, बड़े जिम्मेदारी से हमको करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमेशा भगवान हमको देख रहे हैं और हम भगवान को और वैष्णवों को हम जिम्मेदार हैं हर छोटी चीज के लिए। तो गोविंद ऐसी सेवा करते थे और उनकी सेवा देखकर बाकी शिष्य जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अन्य शिष्य भी सेवा करते थे लेकिन गोविंद जैसे सेवा करने वाला कोई नहीं था, इतना उत्साही और इतना ध्यान देता था वो, देते थे वो हर एक छोटी छोटी बात में। तो एक बार ऐसे हुआ कि अन्य शिष्य गुणगान करने लगे गोविंद का, कहने लगे कि आपके अंदर ये गुण है, वो गुण है, आप कितने महान हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ कहने लगे। तो फिर गोविंद ने जवाब दिया कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मेरे अंदर जो गुण हैं वो प्रशंसा के योग्य हैं। तो अन्य शिष्यों ने सुना, आए ये क्या बोल दिया गोविंद ने, तो जाके रामानुजाचार्य को बताया। फिर रामानुजाचार्य ने बुलाया, आओ गोविंद, देखो तुम बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हो, जिस ढंग से सेवा करते हो वैसे कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारी सेवा का घमंड हमको नहीं होना चाहिए, भक्त को नम्र होना चाहिए, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। हम जो भी सेवा करते हैं, छोटी हो या बड़ी, उसका घमंड हमको नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, मतलब एक भिखारी आदमी भी है, उसके पास एक पैसा है, उसको एक पैसे का भी उसके पास घमंड आ जाएगा कि दूसरे भिखारी के पास वो एक पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक पैसा है। उसी तरह से हमारी सेवा, हम कोई भी चीज अच्छी तरह से कर रहे हो, किसी भी चीज में घमंड आ सकता है, ये संसार है। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा है उसमें भी घमंड आ सकता है, मेरे जैसा झाड़ू मारने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा साफ करने वाला मंदिर कोई नहीं। तो हमको हमेशा नम्र रहना चाहिए सेवा में भी। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि गोविंद ऐसा ठीक नहीं, इतना घमंड करना कि मैं, मेरे अंदर गुण अच्छे, मैं कितना अच्छा सेवा करता हूं, ये भक्त के लिए शोभा नहीं देता। तो गोविंद ने कहा कि हे प्रभु, देखिए मैं गलत मार्ग में चला गया था, केवल आपकी कृपा से मैं सही मार्ग में चला आया, आपने मेरे ऊपर असीम कृपा की, मुझे आश्रय दिया, आपकी सेवा का मौका दिया और अब मैं किसी न किसी तरह से सही मार्ग में लगा हूं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी आपकी कृपा से मैं आपकी सेवा करते जा रहा हूं, तो अगर मेरे अंदर ये अच्छे गुण हैं और ये दिखाई पड़ रहे हैं और कोई इनकी प्रशंसा करता है, तो मैं इसलिए इस प्रशंसा को स्वीकार करता हूं और इसको सत्य मानता हूं कि ये जो अच्छे गुण है वो वास्तव में आपके हैं और आपकी कृपा से, मतलब ये आपके गुण है, तो जब ये मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं वास्तव में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा कि ये जो गुण है वो प्रशंसा के योग्य है क्योंकि ये वास्तव में मेरे गुरु के गुण हैं। और ये भी प्रभुपाद अक्सर बताया करते थे कि जब हमें कोई नमस्कार करता है, हमको प्रणाम करता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमारे बारे में दो अच्छी बातें बोलता है, तो मन ही मन में हमें प्रार्थना करके उसे ऊपर परंपरा में भेज देना चाहिए। उसे हमें समझना चाहिए कि ये कि कोई हमें दंडवत कर रहा है, हमें कोई प्रणाम कर रहा है, हमें कोई हमारा गुणगान कर रहा है, हमारे लिए नहीं है। हमें शीशे एक ग्लास की तरह बनना चाहिए। एक ग्लास जो होता है, आप ये ग्लास का गुण क्या होता है? जब शीशा होता है हमारे सामने, आईना नहीं, दर्पण नहीं, एक केवल ग्लास, तो क्या होता है उससे, उसका गुण क्या होता है? आप साफ साफ दूसरी ओर देख सकते हैं, बराबर है ना, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए, जो भी प्रशंसा जो भी कुछ आता है उसको हमेशा ट्रांसपेरेंट उसका हृदय रहना चाहिए, और जो भी प्रशंसा है ऊपर अपने गुरु को देना चाहिए, उनके गुरु उनके गुरु को देंगे, ऐसे जाते जाते वो कृष्ण के पास जाता है, अपने लिए कुछ भी नहीं लेकिन सब गुरु परंपरा में। तो इस तरह से गोविंद ने जो कहा कि ये जो प्रशंसा, तो गोविंद ने कहा कि ये जो प्रशंसा हो रही है ये मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए हो रही है। और एक बार ऐसे घटना हुई कि रामानुजाचार्य के कई शिष्यों ने गोविंद को एक वेश्या के घर के बाहर बैठते हुए देखा सुबह सुबह, जबकि उनके सुबह के कार्य हुए भी नहीं थे। आश्रम में, हर एक आश्रम में सुबह सुबह के प्रातःकाल के कार्य रहते हैं ना, जैसे हमारे मंदिर में हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर तुलसी पूजा जपा करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो गोविंद अपने आश्रम में, गुरु के आश्रम रहते हुए भी अपने सुबह के कार्य नहीं किए थे, लेकिन शिष्यों ने देखा कि एक वेश्या के घर के सामने वो सीढ़ी में बैठा हुआ है सुबह सुबह। तो सबको आश्चर्य हुआ, फिर सब जाके रामानुजाचार्य के बोलने लगे कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तो रामानुजाचार्य ने बुलाया गोविंद को, अरे क्या चल रहा है, क्या तो वहां पर क्यों बैठे हो? तो गोविंद कहने लगे कि ऐसा है कि ये जो वेश्या है, इतने मधुर स्वर में, इतने भक्ति भाव से वो प्रभु रामचंद्र की गुणगान गा रही थी, रामायण से गीत गा रही थी, कि बस मैं भाव विभोर होकर वहीं बैठ गया, मैं दुनिया को भूल गया कि भगवान राम का स्मरण करते में बैठ गया। और रामानुजाचार्य को पता चला कि ये ढोंग नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त पहचान सकते हैं कौन व्यक्ति नकली है, कौन असली है, तो खोटे सिक्के को पहचान सकते हैं। कभी कभी यह भी बताया जाता है, अति भक्ति चोरेर लक्षण, अति भक्ति जो अचानक करता है फिर उसमें कुछ दाल में काला कभी कभी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो खोटे सिक्के को पहचान सकते हैं, भक्त कौन नकल करता है, कौन असली है। तो उसी तरह से रामानुजाचार्य जान गए कि ये गोविंद सच्चा है, और फिर उन्होंने आलिंगन किया कि वास्तव में तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। तो खैर इस तरह से गोविंद वहां सेवा करते रहे, लेकिन एक दिन गोविंद की मां दीप्तिमती वहां पर आई कि गोविंद की पत्नी मेरे पास में है, अब कई साल हुए विवाह के लेकिन गोविंद का कोई संतान नहीं हुआ, तो उसके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य निभाने चाहिए, तो आप उसे ऐसा आदेश दीजिए कि वो अपना गृहस्थ धर्म संभाले। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, और फिर गोविंद को बुलाया और गोविंद से कहा कि देखो गोविंद, तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ का कर्तव्य पालन तुम्हें करना चाहिए, तो जाओ अपने घर में जाओ, अपने आप को शुद्ध रखो, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से तुम मुक्त रहो, और ऐसे शुद्ध अवस्था में अपने पत्नी के साथ रहो और संतान की उत्पत्ति करो। तो फिर ठीक है, शिरोधारी कह के गोविंद वापस चले गए अपने घर में, लेकिन दीप्तिमती फिर से चली आई थोड़े दिन बाद कि गोविंद अपने कर्तव्य के पालन नहीं कर रहा है, फिर भी एक गृहस्थ नहीं बन रहा है वो। तो फिर रामानुजाचार्य ने फिर से गोविंद को बुलाया कि अब क्या बात है। तो गोविंद कहने लगा कि आपका आदेश का पालन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे कहा कि सबसे पहले मैं तीन गुणों से मुक्त हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, और फिर मेरे पत्नी के साथ मैं रहूं और कुटुंब का भरण पोषण करूं और संतान की उत्पत्ति करूं, लेकिन मैं अनुभूति कर रहा हूं कि जैसे मेरे भक्ति शुद्ध हो रही है फिर मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या किया जाए, इसलिए आपके आदेश का पालन करना मुश्किल है। फिर रामानुजाचार्य सोचे तो दो क्षण और फिर कहने लगे कि मुझे लगता है गोविंद, हर एक व्यक्ति को उस आश्रम को स्वीकार करना चाहिए जो कि उसके लिए उपयुक्त है, जो उसके मानसिक शारीरिक स्थिति के अनुसार है। तुमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए, अभी तुम्हारे लिए संन्यास ही ठीक है। तो गोविंद को बड़ा खुश हुआ, दीप्तिमती से भी उन्होंने अनुमति ले ली रामानुजाचार्य ने, और फिर उन्होंने संन्यास के दीक्षा के लिए संस्कार यज्ञ के लिए वह सब सारी व्यवस्था कर दी और उनको दीक्षा दे दी और गोविंद को एक नाम रखा मनमथ, मतलब जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। इस नाम से वास्तव में लोग रामानुजाचार्य को बुलाते थे, तो फिर गोविंद ने यह नाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए फिर गोविंद को उन्होंने और एक नाम दिया जो तमिल में वही अर्थ है मननाथ का। मननाथ जो संस्कृत में था लेकिन वही बात तमिल में है एम पेरुमनन, तो ये नाम दे दिया और संक्षिप्त में उनको वो एम्बार बुलाए करते थे, एम्बार। और फिर गोविंद या एम्बार के पीछे उन्होंने जगन्नाथपुरी आश्रम में श्री संप्रदाय का एक मठ भी खोला, एम्बार मठ। तो आप में से जो जगन्नाथपुरी गए आपको याद होगा एक एम्बार मठ वहां है श्री संप्रदाय का, तो वो उन्होंने अपने भाई गोविंद के पीछे वहां नाम रखा। इस तरह से गोविंद ने फिर से संन्यास ले लिया और आगे चल के रामानुजाचार्य के मन में इच्छा हुई कि मैंने जो यमुनाचार्य के शरीर के सामने जो व्रत लिया था कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखूंगा, वो अभी मेरी इच्छा पूर्ण हुई नहीं है, वो व्रत मैंने पूरा नहीं किया है, तो वो करना चाहिए। तो किस तरह से, ये भी बड़ी सुंदर कहानी है कि किस तरह से उन्होंने आखिर में ये टीका लिखी और ये कैसे हुआ और आगे की लीलाएं हम अगले एकादशी को सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम दर्शन लेंगे, दर्शन के बाद प्रश्नोत्तर और फिर प्रसाद होगा सबके लिए।